بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها. इस सूरज का नाम अशम्स है, सूरत शम्स। शम्स अरबी जुबान में सूरज को कहते हैं। इतना बड़ा सूरज जो रोजाना निकलता है और डूब जाता है उसको आदमी ने शम्स कह दिया। इस सूरत में 15 आयतें हैं और ये सूरत हिजरत से पहले अल्लाह ताला ने उतारी है। अल्लाह ताला ने 7 चीजों की कसम उठाई। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की। सुबह में जब तकरीबन 8-9 बज जाते हैं तो सूरज काफी ऊंचाई पर आ जाता है और उसकी धूप पूरी जमीन के ऊपर फैल जाती है। उस वक्त सूरज की पोजीशन ऐसी होती है कि हम अगर सूरज को देखना चाहे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती, देख सकते। बाकी फिर 10 बजे के बाद सूरज इतना तेज हो जाता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। सुबह के वक्त पर सूरज हमको थोड़ा नजदीक भी लगता है। 11-12 बजे जब ऊपर आ जाता है तो बहुत दूर दिखता है और सुबह सुबह देखो तो ऐसा लगता है कि ये आदिपुर सामने है, करीब में दिखता है। अल्लाह ताला की चढ़ते सूरज की कसम खा रहे हैं। दूसरी कसम चांद की, जबकि वो सूरज के पीछे पीछे आए हैं। शाम को जब सूरज डूब जाता है तो फिर चांद निकलता है। चांद की सिस्टम भी बड़ी अजीब है। महीने में कुछ दिन तो ऐसा होता है कि सूरज डूबने से पहले चांद निकल आता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सूरज डूबने के बाद चांद निकल जाए। इस चांद की अल्लाह ताला कुरान में कसम उठाते हैं। तीसरी कसम दिन की, जबकि वो सूरज का जलवा दिखाए, यानी पूरा दिन खोई के सामने आ जाए। चौथी कसम रात की, जबकि वो उस दिन पर छा करके दिन को छुपा ले। रात जब आती है तो सूरज डूब जाता है और रात की अंधेरी की वजह से पूरा दिन खत्म हो जाता है और रात का अंधेरा पूरी दुनिया में फैल जाता है। पांचवी कसम आसमान की, और जिस अल्लाह ने आसमान को बनाया उसकी, कैसा अजीब अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया। छठी कसम जमीन की, और उस अल्लाह की जिसने उस जमीन को बिछा दिया, कितनी प्यारी जमीन अल्लाह ताला ने बिछाई। और सातवीं कसम इंसान की जान की, नफ्स की, और उस अल्लाह की जिसने उसको सवारा और बराबर किया। पांच चीजों की कसम खाके अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान के दिल के अंदर दोनों तरह की बातें डाली है, बुरी बात भी डाली और परहेजगारी और तकवा की बात भी डाली। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को मजबूत ही बनाया, किसी चीज की इस दुनिया में अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं रखी। अल्लाह ताला ने एक नेकी का रास्ता पैदा किया, एक गुनाह का और बुराई का गंदा रास्ता पैदा फरमाया, और इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, उसकी मर्जी पर छोड़ा कि तू नेकी के रास्ते पर जा या तू गुनाह के रास्ते के ऊपर जा। इस दुनिया के अंदर कोई मजबूर नहीं है, अल्लाह ने हमारी मर्जी के ऊपर इस दुनिया के अंदर नेक और बुरा रास्ता रखा है। देखो अजान होती है, कान में आवाज पड़ती है, अल्लाह ताला के बदल से हम मस्जिद की तरफ आ गए, अपनी मर्जी और खुशी से आ गए, कोई जबरदस्ती हमको पकड़ के ले आया। जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए, गुनाह की जगह पर गए, घूमने गए, खेलने निकल गए, वो भी अपनी मर्जी और अपनी खुशी से गए। तो नेक काम करने में और गंदे काम करने में इंसान मजबूर नहीं है कि किसी को जबरदस्ती नमाज पढ़ाओ, किसी को जबरदस्ती गुनाह कराओ, ये कोई आदमी मजबूर नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको आजादी का छोड़ दिया कि तुम अल्लाह का नाम लो या गंदी बात बोलो, कुरान पढ़ो या गाने गाओ। अल्लाह ने आजादी रखी, लेकिन पता कब चलेगा? आखिरत के अंदर, कि जिन लोगों ने नेक रास्ता अपनाया अल्लाह उनको जन्नत देंगे, जो बुरे रास्ते पर चले अल्लाह उनको जहन्नम अता फरमाएंगे। फिर आगे फरमाते जिसने अपने रक्त को पाकीज़ा बना दिया वो आदमी कामयाब हो गया, और जिसने उसको गुनाह में लगाया मुराद के अंदर लगा दिया, वो आदमी नाकाम हो गया। ये इंसान का जो नफ्स है, जो हमारी रूह है, इंसान इसको पाप और अच्छे रास्ते पर ही डाल सकता है और उसके अंदर गंदी और बुरी आदत भी डाल सकता है। इंसान का ये नफ्स ये पूरी बॉडी को, पूरे बदन को कंट्रोल करता है। जब ये इंसान नेक लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, तो उसका नफ्स और उसका आत्मा नेक बन जाता है, पाप बन जाता है, और फिर उसको अच्छी अच्छी बातों को दिखला जाता है। और जब ये इंसान गंदे काम करता है, बुरे काम करता है, तो ये नफ्स कभी गंदा बन जाता है और फिर इंसान को गंदी गंदी बातें दिखलाता है। हम बहुत सी मरतबा बैठे 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 मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ गया हूं, चलो मैं कुरान पढ़ गया हूं, चलो मैं तस्बीह पढ़ गया हूं। ये क्या चीज है? हमारा आत्मा, हमारा नफ्स जो अंदर है वो नेक है, वो पाप हो गया है, तो अच्छी बातें हमको निकलाता है, अच्छी बात हमारे दिल में डालता है। और वो नफ्स और आत्मा जब गंदा होता है तो वो गंदी गंदी और बुरी बुरी बातें हमको निकलाता है। और ये नफ्स पाप कैसे बनेगा? जब पाप लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा आत्मा और नफ्स पाप बन जाएगा। और जब आदमी गंदे लोगों के साथ दोस्ती करेगा तो ये आत्मा और नफ्स भी गंदा बन जाएगा। ये आदमी जैसे लोगों की कंपनी में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, उसका असर उसके नफ्स और उसके आत्मा के ऊपर पड़ता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान की एक आयत में हमको फरमाया, वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यद्ऊन रब्बहुम बिल्ग़दाति वल्आशी। तुम अपने नफ्स को, अपने आत्मा को कैसे लोगों के साथ रखो, कैसे की दोस्ती में रखो जो सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करते, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह की तस्बीह पढ़ते, ऐसे लोगों के साथ रहो तो तुम्हारा नफ्स भी नेक और पाक हो जाएगा। और जो हर वक्त गालियां बोलते हो, झूठ बोलते हो, गलत बातें बोलते हो, जो लोगों की दोस्ती में रहोगे तो फिर उन लोगों का नफ्स और आत्मा भी गंदा हो जाएगा। इसलिए हदीस में हमको एक दुआ बताई, रब्बी आती नफ्सी तक्वाहा وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا رَبِّ أَعْطِي نَفْسِي تَقْوَاهَا। اے اللہ تو ہمارے نفس کو تیرا ڈر عطا فرما، اگر یہ نفس اللہ سے ڈرتا ہو گیا تو انسان کا پورا بدن اللہ سے ڈرتا ہو جائے گا۔ इसलिए नफ्स कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, ये रिमोट कंट्रोल के कारण है। अगर नफ्स और आत्मा अल्लाह से डरने लगा तो इंसान की पूरी बॉडी अल्लाह से डरने लगती है और फिर इंसान सुधर के काम नहीं करता है। रब्बी आती नफ्सी तक्वाहा انت وليها ومولاها وزكها انت خير من زكاها. اے اللہ تو ہی نفس کا مالک ہے, تو ہی اس کا والی اور متولی ہے, اس کو سنبھالنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک اور صاف کرنا ہے, تو سب سے اچھا اس کو پاک صاف کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم کا عجیب قصہ ہم کو سنایا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نافرمانی کر کے, شرارت اور طوفان کر کے اللہ کے نبی کو جھٹلایا. جب ان میں کا ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو پتھر بھی اس کا بھی پتھر جیسا تھا, تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے کہا, حضرت اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا اور اس کی پانی پینے کی باری کا خیال رکھنا. لیکن اس قوم کے لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا, جس کے نتیجے اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب لگاتار بھیج کر کے برباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ قوم تھی دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں برس پہلے. اس قوم کا نام ہے قوم ثمود. اس قوم بہت طاقت والی قوم تھی, لمبے لمبے ان کے آدمی تھے, جیسے ہمارے یہاں ناریل کے درخت ہوتے, حجور کے درخت ہوتے, ایسے لمبے لمبے ان کے آدمی ہوتے تھے. اور ایسی طاقت والی قوم کہ پہاڑ کو کھود کھود کر کے پاؤں کے اندر مکان کرنا چاہیے. آج بھی قوم کے کھودے ہوئے بنائے ہوئے مکان موجود ہے. مدینہ منورہ میں تقریباً 450 مائل مدائنہ صالح ہے, آج بھی وہ شہر ہے. عجیب طاقت والی قوم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام ایک پیغمبر کو بھیجا. نبی نے آ کے ان کو سمجھایا کہ اے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم کیسے مانیں؟ کوئی چمتکار بتاؤ, کوئی معجزہ بتاؤ تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ وہ کہنے لگے, حضرت ہم ایک معجزہ کہتے ہیں, وہ دکھاؤ. کا کیا معجزہ دیکھنا ہے, کون سا چمتکار دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے پہاڑ بتلایا, پورا پتھر کا پہاڑ, اور پتھر کے پہاڑ کے اندر ایک چٹان تھی, بہت بڑی چٹان. اب چٹان کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا, पूरा पत्थर ही पत्थर होता है। तो कहने लगे कि आप अगर सच्चे नहीं है तो दुआ करो ये पत्थर की चट्टान फट जाए और अंदर से ऊंचनी निकले, पत्थर की तो ऊंचनी आ गई और ऊंचनी भी ऐसी आ गई कि वो 10 महीने ही घाबर हो गए, उसके पेट में 10 महीने का बच्चा हो गया और बाहर आने के बाद उसको फौरन बच्चा हो गया है। कैसी अजीब बात करी, एक तो पत्थर में से ऊंचनी निकाल देगी वो भी 10 महीने की घाबर और वो भी आने के बाद फौरन बच्चा दे रहे हैं कि उठनी आप दिखाओ तो हम ईमान लाएंगे, आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे। हजरत सालेह सलाम ने फरमाया कि वादा करो कि ईमान लाओगे, कभी बिल्कुल ऐसा होगा तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के बाप ने दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, पूरी कौम पूरी बस्ती के लोग बड़ा दौड़ा सब जमा हुए देखने के बाद को और अल्लाह ताला ने वो मौजूदा निकलाया कि पत्थर फटा चट्टान फट गई अंदर में से रोशनी हुई दौड़ती हुई मैदान में आई। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, दौड़ती हुई मैदान में आई और पब्लिक के बीच में आकर के उसने एक बच्चा दिया फौरन। एक अजीब अल्लाह ताला ने मौजूदा लिखा है। अब अल्लाह के नबी के सामने इन लोगों ने वादा किया था कि ऐसी उठनी आएगी तो हम ईमान लाएंगे, जब ऐसी उठनी आ गई तो कहने लगे कि बाले ये तो सब जादू का तमाशा है, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो जादू मंत्र है और अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए ना के दिया ईमान लाए है। अब ये उंगली अजीब उंगली जो खेत हो गए, खेतों में जाकर चलने के लिए तो एक दिन में सब खेत खा जा कुछ बचा नहीं, इसे कुदरत भी उठनी थी चारों तरफ खेत तो जिधर जा रहे समझो आज इधर गए तो इधर जितने खेत रास्ते में आ रहे सारे खेत खा जा रहे, यानी घास चारा पत्ते जो मिला सब खा जा रहे, पानी के कुएं पर जा रहे तो सारा पानी पी जा रहे कुछ नहीं बचा रहे। तो बुरी कौम के लोग परेशान परेशान सोच रहे हैं तो हजरत सालेह अलैहि सलाम के साथ कंप्रोमाइज हुई, चलो सुना करो बैठक करो बात करो और पानी बनाओ, इसलिए कि पूरी कौम के लोगों के पास भी जानवर थे, वो सब खेती वाले जानवर वाले लोगों की यहाँ बकरी ऊन दाल सब पाले हुए तो क्या पानी बनाए कि एक दिन ये उतनी कुएं पर पानी पीने आएगी और एक दिन पूरी कौम के जानवर पानी पीने आएंगे, बारी बना लो सही बारी बना लो बहुत अच्छा। अब समझो कि आज गुजरात को हजरत सालेह अलैहि सलाम की उतनी में पानी पिया तो कल वो पानी पीने नहीं आएंगे और कल सब लोगों की जानवर पानी पीने आएंगे, फिर शनिवार देवी उठनी पानी पी जाएगी भारी बन जाए और इस उठनी की खूबी है ऐसे योग्य है अजीब जानवर है, एक मरतबा पानी मिले तो इतना पी लेता है कि फिर तकरीबन उसको 15 दिन 20 दिन 25 दिन पानी न मिले तो भी वो चलता रहता है। अल्लाह ने उससे एक अजीब कैपेसिटी रखी है, अंदर कुदरती तौर पर पेट में एक वाटर टैंक होती है, पानी की टंकी होती है,
वो सारा पानी अंदर जमा कर लेता है, पीता है। जिस जरूरत पड़ती तो थोड़ा 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 अंदर ही अंदर सप्लाई होता रहता है। अजीब अपने उसके अंदर ताकत रहती है, इसीलिए वो रोड में और जैसे रेती के इलाकों में जहां पानी नहीं होता वहां सबसे ज्यादा वो पी सकता है। राजस्थान जाओ, कच्छ में जाओ, अरब में चले जाओ, चलता रहता है। बल्कि बाघ मरमरा तो ऐसा होता है कि काफिले करते हैं तो पानी की जरूरत पड़ी, पानी नहीं मिला तो खुद जमा करो, होश खा जाओ और अंदर से पानी की टंकी में से पानी निकाल के पियो। ऐसा भी होता है। खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उनके साथ भी ऐसा वाकया हुआ। हुजूर हिजरत के लौटे काल तबूक में गए, उनके इमाम सीरिया, तो उस सफर में पानी इतना कम था, इतना कम था कि ऊंट को दबा करके उसके अंदर से पानी निकाल करके मुझे उसे पीना पड़ा। तो अब ये उम्मीदी अजीब थी कि अपनी बारी के ऊपर ही पानी पीने आती है, रोज पीने आती थी, लेकिन अल्लाह की शान देखो जिस दिन उसकी बारी हो गई उस दिन वो सब पानी तो पी जा रहे और कौम के लोगों को पानी आज नहीं मिलेगा क्योंकि अकेले पी जाएगी और कुएं खाली हो जाएंगे, रात भर के कुओं में पानी आएगा और कुएं भर जाएंगे। इसलिए जो कुएं भरे कुएं में हर वक्त पानी नहीं रहेगा और ये उम्मीद एक साथ पी थी पूरा कुआं खाली करते फिर रहते तो 24 घंटे में धीरे 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 पानी आ जाता है। उतनी की खूबी ये थी कि आप अगर ये पूरे कुओं का पानी पी जा रहे तो जितना पानी पीती थी इतना लोगों को जरूर देती थी और लोगों को तो मजा आ जाता था कि आज अगर ये उतनी सारा पानी पी जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं, समझो 100 लीटर पानी पी गई, 1000 लीटर पानी पी गई तो इतना दूध देगी लोगों को और लोगों को उसकी दूध ही दूध पीने को मिलता है, मजा आ जाता है लोगों को। अल्लाह की दीन की अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट भेजी गई। हजरत सालेह ने सलाम में कहा कि वो बाड़ी तैयार है, एक दिन ये पानी पी गए, एक दिन तुम्हारे जानवर पानी पी गए, एक दिन ये चलने आए, एक दिन तुम्हारे जानवर चलने आओगे, बड़ी उतनी थी कुदरती होगी। वो जिधर जा रहे लोगों की जगह पर भाग जा रहे कोई वो खड़े नहीं रहे तो ये तो बारी बारी है अब कोई गड़बड़ मत करें। लेकिन हजरत वाले सलाम की उतनी की वजह से बाद लोगों के दिलों में हसद और जलन पैदा हो गई और ऐसा हुआ कि एक औरत थी उस कौम में जिस औरत का नाम सदूक था, बहुत खूबसूरत औरत थी और उसके पास बहुत सारे जानवर थे और एक दूसरी औरत थी जिसका नाम अनीसा था, उसके पास भी बहुत सारे जानवर थे। उसने लोगों के तकलीफ में ऑफर रखी सलाम की होती सब खा पी जाती है उसको मार डालो, उसको खत्म कर डालो। और सदूक ने यह ऐलान किया कि जो इस ऊंचनी को मरद मार डालो उस मरद के साथ में शादी करूंगी। वो खूबसूरत भी थी और पैसे वाली भी थी। तो इस्लाम नाम का एक आदमी तैयार हो गए कि मैं हजरत सारे में सलाम की उंगली को मार डालू तो मुझे डबल फायदा हो जाएगा, एक तो इस औरत से शादी भी हो जाएगी और उसका माल भी मुझे मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। और उस अनीसा नाम की औरत की
उसने ये ऑफर कर दी कि जो भी कुंजनी को मारने खड़ा होगा मैं अपनी जवान लड़की के साथ उसकी शादी कराऊंगी। तो कैलाश इसके साहिक नाम का एक आदमी तैयार हो गया। ये दो लगमान कैलाश और निष्ठा शादी की लालच में पैसों की लालच में तैयार हो गए हजरत काले अल कलाम की अल्लाह की उंगली को मारने के वास्ते और एक बार के मान छुप के बैठ गए। जब ये उंगली निकल करके आई अपनी बारी पर पानी पीने के लिए तो ये दोनों बदमाशों ने पीछे से हमला किया और इस उंगली को कतल कर दिया रास्ते ही में। और वो जो उसका बच्चा था वो बच्चा वहां से भागा और भाग करके उसी पहाड़ पर गया जिस पहाड़ से उसकी मां निकली थी और फिर वो पहाड़ हटा और वो बच्चा अंदर जाके हो गए गायब हो गया वो बच्चा। और कहते हैं कि कुरान की जो दूसरी आयत है कयामत से पहले पहले एक जानवर निकलेगा सबा पहाड़ में से जो लोगों के साथ बात करेगा कहीं वो ही बच्चा है जो बच्चा चट्टान से चला गया वही कयामत से पहले पहले दोबारा निकल के आएगा और लोगों से बात करेगा। ये भी पक्की की बात है। जब ये हालत हो गई तो हजरत साले अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह की उंगली को कतल किया है अब अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। जो अल्लाह का अजाब आता है इमान के अल्लाह की तरफ से फसल नाम अजाब आया जिब्रील अमीन आए और ऐसी भयानक आवाज डरावनी आवाज एक चिंगार लगाई एक चीख मारी जिब्रील अमीन ने कि पूरी कौम के लोग बेहोश होके मर के खत्म हो गए। अल्लाह ने पूरी कौम को आजाद से हलाक कर दिया। मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सब खत्म। इसलिए कि खुदा का आजाद आता है तो आजाद में भी सब बराबर हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हमने जो इस कौम को आजाद में खत्म कर दिया तो कोई इनकी तरफ से मेरा बदला लेने नहीं आया मेरे पास और अल्लाह के पास कौन बदला लेने जाए। आज तो एक आदमी दूसरे आदमी को मार डाले तो उसके रिश्तेदार लोग सब बाड़ी भरा के खड़े हो जाएंगे बदला लेने जाएंगे और कचहरी में जाएंगे केस करेंगे। आज भी तो 10 साल के बाद बदला लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरी कौम को मैंने बर्बाद कर दिया लेकिन जो है कि मेरे पास बदला लेने आवे और अल्लाह के पास कौन बदला लेने जा सकता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमको खास बात फरमाई ए लोगों तुम्हारे दिलों के अंदर एक नफ्स है आत्मा है उसको अच्छा रखो और हमने इस दुनिया में तुमको मजबूर नहीं बनाया तुमको तुम्हारे इख्तियार पर तुम्हारी मर्जी पर छोड़ा है। तुम अच्छे काम करो अल्लाह राजी होंगे और गलत और गुनाह और बुराई के काम करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब तुम लोगों के ऊपर आएगा। कितनी बड़ी ताकत वाली कौमों को अल्लाह ने अजाब से अजाद कर दिया। आज भी लोग वहां जाते हैं मदाई में पाले तो देखते कौन समुद्र के बड़े बड़े मकान पूरे पूरे पहाड़ खोद खोद करके बनाए हुए हजारों वर्ष गुजरने के बाद भी वो इबरत का सामान है जो देखे और उसे इबरत पकड़े। अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी से हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारे नफ्सों को पाकीज़ा बनाए और नफ्स की हर शरारत से अल्लाह सुभान व तआला हमारी हिफाजत करो।